ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அவித்யா கே அந்தர்கத் ஹோனே சே வோ அபராவித்யா பராவித்யா நஹீ. இஸ்லியே குணவான் வஹீ ஹே ஜிஸ்கோ பிரம்ம ஜ்ஞான ஹோ ஜாயே வோ சப் குண சம்பன்ன ஹே. ब्रह्म ज्ञान जिसको नहीं होता है, नहीं होता होगा, जितने गुणवान, जितने धन संबंधी, जितने बुद्धि विवेक कुछ भी हो जाए, उसका जन्म व्यर्थ हुआ. एक बार परमात्मा कृपा करे मनुष्य जन्म देते हैं, सारे मनुष्य सबका अधिकार है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, और सबका ही कर्तव्य, इसी के लिए ही मनुष्य जन्म मिला. ये कोई नहीं कि सन्यासी ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे अथवा ब्राह्मण ही अधिकारी, ऐसा नहीं. यो यो देवानाम प्रत्यबुद्धत सैव तदभवत तर्षीणाम तथा मनुष्यानाम. श्रुति कहती जो अभी भी जो भी देवता में जो जो ज्ञान को प्राप्त करे तथा ऋषियों में तथा मनुष्य से अभी भी जो भी ज्ञान को प्राप्त करेगा, कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. सारे मनुष्य सबका कर्तव्य वही है. एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना यही कर्तव्य, उसी के लिए बाकी जितने कर्तव्य उसके साधन के रूप से, अन्य जितने हैं उसके साधन उसके लिए ही सब कुछ. तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम नैवम अन्यार्थम आत्मनि. अन्यत्र जो प्रेम है अपने लिए, अपने में जो प्रेम अन्य के लिए नहीं, अतः तत् परमम तेन परमानंद आत्मन. आत्मा परमानंद है, सबसे आनंद परमानंद, सबसे प्रियतम. तो उसके ज्ञान प्राप्त करना वही मुख्य है. वेद में कर्म कांड भी जितने उपासना है सब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप से. कर्म योग है ज्ञान योग प्राप्ति का साधन. गीता में भगवान दो निष्ठा बता देते हैं, ज्ञान योग कर्म योग. ज्ञान योग ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और कर्म योग ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए. ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना, आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारण इष्यते. योगारूढ़ तस्व योग सम कारण इष्यते, सम निवृत्ति. आरूढ़ ज्ञान योग में हो गया तो सम सब कर्म छोड़ना, किंतु आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण योगम आरूढ़ो. ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म उपासना कारण. अर्थात जितने सब है सर्वे वेदायत पदवामानती. एक ब्रह्म पद को प्रतिपादन करने के लिए सारे वेद, सारे जितने है सब एक परमात्मा दर्शन के लिए ही है. उसको नहीं करके बाकी जितने क्या है, महति विनष्टि. यदि नहीं जान पाया तो नचेदिहा वेदित महति विनष्टि, सबसे बड़ी हानि है. इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, वही सद्गुण है. पुत्र इतने सद्गुण संपन्न होने पर भी पिता भी ज्ञानी है, क्योंकि वो ज्ञान का उपदेश करेंगे आगे. होने पर भी सद्गुण गुणवान पुत्र का उपनयन करके वेद अध्यापन नहीं करते हैं, अन्य आचार्य के पास भेजते हैं. इसमें एक अनुमान करते प्रवास, और व्यास जी भी शुक जी को भेजते थे जनक के पास. व्यास जैसे कोई कम नहीं असमर्थ, और शुक भी कितने समर्थ है, फिर भी पिता के बस ही पुत्र का बहुत सम्मान होता है, होना ही गुरु गुरु है. तो भी पिता पितृभाव संबंध के कारण व्यास जी के उपदेश से शुक्र जी को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया. व्यास जी ने भेजा, जाओ जनक जी के पास जाओ. तो वो दूसरे पास जब जाते हैं और अपना अभिमान छोड़ करके जनक जी उनको मिलने के पहले खड़ा कर देते बाहर, तो अभिमान पूरा खत्म हो जाए तभी गुरुत्व ने उनको स्वीकार कर शिष्यत्व ने समर्पित हो तो ग्रहण होता है. उपदेश व्यास जब जनक ने कहा, शुक जी कहते हमारे पिता ने कहा था, मैं भी जानता हूं इतने. जनक जी कहते यही उपदेश है और कुछ नहीं है. यही जो अभिमान कुछ था प्रतिबंधक, उसके निवृत्ति के लिए व्यास जी ने भेजा था, और उपदेश कुछ अधिक नहीं, वही उपदेश काम करता है. तो अन्य के पास भेजे उपनयन के लिए, वहां जाकर के वेद अध्ययन किया. सह द्वादश वर्षम उपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान वेदान अधीत्य महामना अनुचान मानी स्तब्ध एआय तंह पितो वाच. सह द्वादश वर्षम, जो गुरुकुल में गया 12 वर्ष का था, उसके पहले जन्म संस्कार तो हो जाता है, किंतु वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में नहीं गया था, अभी वो गया। चतुर्विंशति वर्ष, बारह वर्ष जाए, बारह वर्ष और रहा, चौबीस वर्ष होने तक तो गुरुकुल में रहा। सर्वान वेदान अधित्य, सारे वेद को, चारे वेदों को पढ़ लिया। अरे वेद के नाम लेने से उसके अंगों का भी ग्रहण हो जाएगा। देवदत्त आगत, देवदत्त आ गया, उसके हाथ भी आया, उसके पाद भी आया, उसके सिर भी आया, अलग से कहना पड़ता है। देवदत्त आ गया मतलब हस्त पाद मुख सब है, अंगी के नाम लेने से अंगों का भी ग्रहण हो जाएगा। तो वेद के नाम लिया तो छह अंगों का भी ग्रहण अपने आप हो जाएगा, अंगों का नाम नहीं लेने की आवश्यकता नहीं। कोई नहीं कहता देवदत्त आ गया, उसका नाक भी साथ में, कान भी साथ में, कोई कहता है? इसी पर छह अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुत्त, छंद, ज्योतिष, ये सब छह अंग के साथ सारे वेद को पढ़ लिया। सब पढ़ करके आया, जब आया महामना, महत मनुष्य, बड़े अपने को मना, महामना मतलब उदार भाव, तो ये इसको कह दी ऐसा नहीं, वो अपने को बड़ा मानने लगा, बहुत हमको आता है, बहुत पढ़ लिया। अब घर में जाए अनुचान मानी, सब अध्ययन किया, अध्ययन किया तो मानता है कि अब सब कुछ हमको आता है, कोई कुछ पूछेगा तो हम बोल सकते हैं, सब ज्ञान हमको आ गया, बहुत पढ़ लिया, अनुचान मानी। कोई कोई तो कुछ नहीं पढ़कर बोलते हमने सब पढ़ लिया, और जो कथा में कोई कोई आते ना सुनोगे तो बोलेंगे हमने सब पढ़ लिया, हमें इतने पढ़ लिया, इतने पढ़ लिया, बहुत कहेंगे। पढ़े नहीं पढ़े अपने आप ही कहते, नहीं पढ़ने वाले भी बहुत कहते बहुत पढ़ लिया, बाद में पता चलता है कुछ नहीं पढ़े। अथवा जिनसे पढ़े उनका नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे बहुत बड़े बड़े विद्वान का, कितने हम इतने बड़े बड़े विद्वान से पढ़े, कितने देखे पढ़े हमसे, कहें काशी में बड़े बड़े विद्वान से हमने पढ़ा, बड़े बड़े विद्वान का नाम सुने उनका नाम कहेंगे, अब इतने साल हम रहे कुछ नहीं, छह महीना एक साल कभी बीच में कभी गया घूमकर आ गया काशी में, हम बहुत बार साल लगकर पढ़े, ऐसे कोई लोग कहते नहीं पढ़ करे। अब जो पढ़ा हुआ है अब तो अपने क्या नाम मानेगा, जो नहीं पढ़ने वाले भी सबको कहते हमने बहुत पढ़ा कहते, ये बहुत पढ़ कर गया महामाना अनुचान वाणी, और कोई पूछा उत्तर देंगे स्तब्ध, स्तब्ध कौन से अप्रणत स्वभाव, विद्या ददाति विनयम, विद्या की प्राप्ति से पेड़ में फल लग जाने से जैसे पेड़ झुक जाता है, अन्य समय तो पेड़ के शाखा को खींचते बच्चे कहीं खींचते है कुछ खेलने के लिए, छोड़ देते फिर चला गया, खींचते है तो फिर चला गया, किन्तु फल जब लग जाते इतने नीचे आ जाता है उसको रखने के लिए नीचे ठेस लगाते हैं लकड़ी, नींबू का पेड़, आम का पेड़ कभी देखा, नींबू में इतने फल लग जाते हैं नीचे झुक जाता है, लग जाता है उसमें ऐसे लकड़ी लगाकर ऊपर उठाएंगे, फल जैसे लगने से झुक जाते हैं। नम्रति गुणी न जना नम्रति फली न वृक्षा, फल वाले वृक्ष नीचे हो जाते। इसी प्रकार विद्या ददाती विनयम, विद्या प्राप्त होने से नम्रता होती, और वेदांत श्रवण करने से वैराग्य बढ़ता है, आकर सबको प्रणाम नम्र होकर के आया, झुक कर करे नम्रता होनी चाहिए, किन्तु ये देखा स्तब्ध होकर के प्रणत स्वभाव नहीं। ए आय आंग पूर्वक ई आय, इन गति से बनेगा ई आय, लिट लकार में आ ई आय, ए आय मतलब आया, आंग पूर्वक इन धातु का ये ए आय आया, घर वापस आया। तंग हपित उवाच, उसको देकर के पिता ने देखा ये तो क्या बारह वर्ष पढ़कर आया, जो विद्या प्राप्त करने पर जो धर्म होना चाहिए इसमें सद्धर्म नहीं है, ये तो नम्रता नहीं उसके विपरीत है, विद्या का जो फल दिखता नहीं है। अरे क्या पढ़कर आया बारह वर्ष, तो इतने के व्यर्थ हुआ, जो प्रिय वही होता है जो सन्मार्ग में उपदेश करता है, गलत मार्ग में चलता है तो उपदेश देता है ये गलत है बता करके उसको हटात करके सन्मार्ग में चलाना, छोटे हो बड़े हो किसको, कोई भी हो गलत कर्म करता है तो गलत कर्म में उसकी यदि बाह बाह करे तो और गलती करेगा, तो पाप कर्म करेगा तो बाह बाह करने वाले को भी पाप लगेगा, इसलिए कोई भी गलत करता है तो या तो यदि बहुत बड़े आपकी सुनते नहीं तो उसे हट जाओ, उनको कुछ नहीं कह पा देगा, यदि है तो बोलो गलत है तो बताओ, और समर्थन कर देना आंख बंद करके, अथवा हमारा प्रिय है इसे जो भी करता है बस उनका हम तो समर्थन करेंगे, कुछ लोग इसे मानते हो हमारा प्रिय है वो हम उनको समर्थन करना है क्योंकि हमारा प्रिय, ये नहीं प्रिय अप्रिय ऐसा नहीं, सत्कर्म सन्मार्ग में चलता है तो प्रिय होना चाहिए, और कुत्सित निंदित कर्म करता है विरुद्ध में जाता है तो प्रियता नहीं है। ये होना चाहिए जो स्वयं सन्मार्ग में चलता है उसका प्रिय होगा वही जो सन्मार्ग में चलने वाला, विपरीत मार्ग चलने वाले उसका प्रिय नहीं होना चाहिए। यदि विपरीत मार्ग में चलने वाला उसका प्रिय होता है और स्वयं सन्मार्ग में नहीं चलता है, सोचता है मैं सन्मार्ग में चलता हूं किन्तु भ्रांत, जो गलत कर्म करने वाले के प्रति प्रेम दिखाता है, निषिद्ध कर्म करने वाले जिसका प्रिय होता है वो स्वयं गलत मार्ग में चलता है, इससे अनुमित हो जाता है। और नहीं होने पर भी यदि सावधान रहता है तो भी उसको मालूम नहीं होता कभी इस गलत मार्ग में चलने लग जाता है, दूर से हटना चाहिए। ये गलत रास्ता से जा रहा है उसके पीछे पीछे चल तो स्वयं गलत मार्ग में जाना पड़ेगा, नहीं रास्ता वहां जाना है हमको मंदिर जाने के लिए, कोई इधर गया और हमारे प्रिय उधर जाते चलो उनके साथ गए, गए तो गलत मार्ग में हो जाता है तो स्वयं गलत मार्ग है गया। इसलिए कहीं भी यदि विरोध दिखता है या तो उसको बताओ नहीं तो हट जाओ, यदि है बोल सके बताए, समर्थन करना उचित नहीं है, नहीं कर पाए तो कुछ नहीं अपने उसे बचा, अपने को बचा लो। और वो ठीक अगर कि पीछे चले निषिद्ध कर्म करने वाले के पीछे चले तो अपने को पाप लगता है, तो देवता लोग भी परमात्मा भी ऐसे करते, भक्त में अभिमान हो तो परमात्मा भक्तों को अभिमान को नष्ट करते हैं, नारद में का अभिमान हो गया तो भगवान उसको नष्ट करने के लिए कितने क्या, ऐसे महापुरुष लोग के अभिमान को नष्ट करते, अभिमान को पुष्ट नहीं करते, अभिमान को पुष्ट करने से उसकी हानि होती है जो जानने वाले, और नहीं जानने वाले अभिमान तो नहीं समझे किन्तु गलत को समर्थन करना उचित नहीं है। तो ये देखा है इसमें गुणवान होना चाहिए, किंतु गुणवान पुत्र होकर के अभी इस प्रकार आया अध्ययन करने के बाद अप्रणत स्वभाव है, अपने बहुत बड़ा मानता है, तो उसको देख करके आगे पूछते हैं। श्वेत के तो यन्नु सोमेद महामना अनुचान मानी स्तब्धो अस्यु तत्तम आदेशम अप्राक्ष्य ये ना श्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातमिति कथन भगवस आदेश भवती। श्वेत के तो संबोधन यन्न समय इधम महामना हे सम्य, तुम जो अपने को बहुत बड़ा मानते हो, महामना अनुचान मान ऐसे मानते हो कि सब कुछ आता है, चलना फिरना तुम्हारा कुछ विलक्षण दिखता है, स्तब्ध हो और कोई नम्रता नहीं दिखती तुम्हें, अप्रणत स्वभाव करके विनम्र नहीं उसके विपरीत दिखता है, स्तब्ध असी उत्तम आदेश हम अप्राक्ष, क्या तुम आदेश उनसे पूछा है, जो आदेश केवल शास्त्राचार्य के द्वारा ज्ञान होता है, आदिश्य तिथि आदेश, आदेश क्या जाते ब्रह्म, जो शास्त्राचार्य उपदेश से ज्ञान होता है पर ब्रह्म, अथवा जिससे पर ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, ऐसा आदेश क्या उन्हें तुमने पूछा है, उनसे पूछा आचार्य से, जिस ब्रह्म के तत्व केवल आदेश किया जाता है उपदेश किया जाता है, आचार्य शास्त्राचार्य उपदेश से ही जिसको प्राप्त किया जाता है, ऐसे ब्रह्म तत्व उसके आदिश्यते आदेश, जिसका उपदेश किया जाता है शास्त्र आचार्य उपदेश से जिसकी प्राप्ति होती, ऐसे तत्वों के विषय में तुमने आचार्य से पूछा क्या, वही तत्व कौन है, परब्रह्म तत्व जिसका शास्त्र आचार्य उपदेश से ही प्राप्त हो, जिसकी प्राप्ति होती है, अन्य प्राप्ति का साधन नहीं, आदिश्यते आदेश, शास्त्र आचार्य उपदेश से जिसकी प्राप्ति होती है, ऐसा जो आदेश ब्रह्म अथवा जिसके द्वारा ब्रह्म का उपदेश होता है, वही प्रश्न क्या तुमने गुरु से पूछा है क्या, ऐसा क्या कौन से है वो आदेश क्या है, उत्तम आदेशम अप्रतम आदेशम अप्राक्ष, तुमने पूछा है, पूछ करके उसके उत्तर प्राप्त तुमको हो गया क्या, जो परम ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया क्या, ये न अश्युतम सुत भवती, वो क्या है आदेश, आदेश क्या है, कहते आदेश का बताते हैं जिस आदेश को प्राप्त करने पर, जिस परम तत्व को प्राप्त करने पर अश्युतम सुतम भवती, जो श्रवण नहीं किया हुआ वो श्रुत हो जाएगा, रमतम मतम भवती, जिसका मनन कभी नहीं किया परम तत्व को प्राप्त करा तो वो भी मत हो गया, मनन हो गया, जो अभिज्ञात है वो भी विज्ञात हो जाएगा। एक परम तत्व परब्रह्म का ज्ञान शास्त्र आचार्य के उपदेश से ज्ञान ही प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए तो अश्रुत भी श्रुत हो जाए, जिसका श्रवण नहीं किया था उसका श्रवण हो जाएगा, जिसका मनन नहीं इसका मनन, जिसका ज्ञान नहीं उसका भी ज्ञान हो जाएगा। अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा? एक आदेश परमात्मा का आदेश प्राप्त कर लिया, इतने मात्र से जिसका अध्ययन नहीं किया था उसका भी ज्ञान, जिसको देखा नहीं उसको भी देख लिया, जिसका ज्ञान कभी न वो भी ज्ञान हो जाएगा। शिष्य पूछता है ये कैसे हो सकता है? अन्य के ज्ञान से अन्य ज्ञान, हमने कितने पढ़ा वेद, उसके बाद कहते व्याकरण पढ़ा, उसके बाद कहते आचार्य ने कहा अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, और क्या करना है? वेद पढ़ लिया और घर में आने के जो तैयार हो गए कहते अभी मीमांसा पढ़ना है। क्या मीमांसा है? वेदांत तो थोड़ा श्रवण करने है, चार अध्याय ब्रह्मसूत्र, कितनी मीमांसा? 12 अध्याय। जब वेद अध्ययन करके ब्रह्मचारी घर में आना चाहता है, बच्चे को कितने खुशी है, घर में आएंगे, 12 वर्ष रह गया आगे घर में आएंगे, खुश होकर जाने की तैयारी होते, आचार्य कहते गुरु क्लान मां समावर्तिष्ठ, जैमिनी महर्षि कहता अभी रुको, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अभी धर्म को जानो। 12 अध्याय, 12 अध्याय के बाद संकर्षण कांड और 4 अध्याय, कह रही इसे धर्म का विचार करो आगे जाना, क्योंकि वो घर में जाना होता है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना धर्म करने के लिए, धर्म के ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा वहां क्या करना जाकर के, पहले धर्म क्या करना पड़े सीख करके विचार करके जाओ। अच्छा फिर मीमांसा होने के बाद कहते और थोड़ा तर्क भी पढ़ना है न्याय, इतने पढ़ने के बाद पूरा नहीं हुआ न्याय, फिर कहा और भी है, अंग है, ज्योतिष भी शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, ये सब शास्त्र का ज्ञान गुरुकुल में पढ़ते थे, धनुर्विद्या आदि तो बहुत ही, तो कितने ज्ञान होने के बाद अन्य का ज्ञान नहीं होता उसके लिए फिर पढ़ना, इतने पढ़ने के बाद भी और कुछ कुछ शास्त्र सुना जो नहीं पढ़े, और एक ज्ञान से सबका ज्ञान ही कैसे हो जाएगा? कथम न भगवत आदेश भवती, हे भगवान ऐसा कैसे आदेश होगा? ये तो कहीं प्रसिद्ध नहीं कि एक अप्रसिद्ध है, अन्य के विज्ञान से जो अभिज्ञान तो उसका भी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा तो कभी पता नहीं, इतने पढ़ने के बाद अभिज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, ये कैसे हो जाएगा? कथम सब भगवान ऐसा आदेश कैसे होगा, किस प्रकार हो सकता है? अभी पिता कहते किस प्रकार संभव है पहले बताते हैं, आदेश तो बाद में करेंगे, किंतु एक के ज्ञान होने से अज्ञात का भी ज्ञान हो जाता है ये कैसे संभव पहले बताते हैं। एक आदिश्यते ते आदेश पर ब्रह्म, इसका उपदेश क्या तुमने पूछा, तुमको आदेश प्राप्त हुआ, जिसके प्राप्त होने पर जिसके ज्ञान होने पर अज्ञात का भी ज्ञान हो जाएगा, अदृष्ट का भी दर्शन हो जाएगा। कितने जाकर घूम घूम करके आते हैं, बहुत देश दर्शन करके सब देकर आया, लाखों लाखों खर्चे करके फिर भी कोई स्थान रह गया, रह जाते ना नहीं, कितने मंदिर छोटे मोटे मंदिर कितने स्थान बहुत घूम कर आया, किन्तु अभी अपने स्थान में देश में इतने मंदिर इतने स्थान गुहा कहाँ कहाँ मंदिर तो भी नहीं हो पाया, वो दर्शन कर आया तो सुना उसके बाद और थोड़े 10 माइल के दूर और एक स्थान है, कहीं जाते बड़े कठिन वहां तो पहुंचे, वहां जाने के बाद जो उससे और आगे स्थान है के मंदिर वहां थक जाते आगे फिर के नहीं जा पाते, जहां तक गए सबको जहां तक जो गया उसके आगे केदारनाथ दर्शन करते हैं, केदारनाथ जाते समय बड़े थक जाते हैं, उसके आगे कहते भैरव गुफा गए तो वहां चढ़ जाना पड़ेगा, इतने थक जाते तो उधर जा नहीं पाते, सब लोग नहीं जाते हैं। बद्रीनाथ तक पहुंच गए कहेंगे आगे है व्यास गुफा, सरस्वती नदी और भीम के फूल है, वहां तो कोई चल जाते हैं, फिर कहे आगे सहस्रधारा है, ऊपर से पानी गिरता है, सहस्रधारा क्या कहते हैं उसको, दूसरे नाम कुछ है, वहां से पानी गिरता है, दिखता तो है दूर से, पानी ऊपर से गिरेगा नीचे गिरता बर्फ होकर के, वहां जाते हैं पांडव गए थे वहां स्नान किए थे, उसके बाद फिर कहते और तपोवन और आगे है, वो तो भी सब लोग नहीं जा पाते हैं, कितने दूर है, वहां जाने के बाद आगे आगे सुनते हैं, ऐसे सब स्थान मिशा है, कहीं गया और दूर की बात छोड़ो पास में जितने देखा और कहीं छोड़ गया, जाकर दर्शन कराया, बाद में सोचा वहां है कि प्राचीन है मंदिर है देवी का मंदिर है कहीं किसी मंदिर, कितने लोग वाराणसी जाते हैं दर्शन करते हैं, वहां कामाक्षी के पीठ है, नहीं विशालाख्या, विशालाख्या मंदिर है, वो जो जानते तो दर्शन करेंगे जाते, जो नहीं जानते दर्शन नहीं करते, वहां पास में है किंतु नहीं जानते, और उसके बाद काल भैरव भी है, और कितने स्थान है, कुछ ललिता एक स्थान है ललिता घाट में राजराजेश्वरी मूर्ति है, देखा नहीं ये मालूम है, इसे तो हम कहते हम तो एक साल बाहर रहे। राजराजेश्वरी की मूर्ति है, वहां राजराजेश्वरी के विषय में क्या है, कोई राजा की राजा ने कुछ था उनका पुत्र होने के लिए क्या था, किस बाबा ने उनको कहा था तो जो होगा पुत्र हमको दे देना, किंतु कुछ पुत्र नहीं होकर के पुत्री हुई, पुत्री बड़ी हुई तो बाबा ने कहा तुमने कहा था हमको देने के लिए क्यों नहीं दिया, तो दिया। देने के बाद वो कुछ उनके कर दिया तो पत्थर की मूर्ति हो गई, उसी देवी की पूजा होती है, वो सिद्ध पुरुष थे तो अभी वहां है, तो राज कहती ये देवी है तुम्हारे घर में आई थी, इसकी पूजा होकर मंदिर है देवी राजराजेश्वरी ललिता घाट में, कभी जाने पर देखे ना वहां देवी की पूजा होती है, वो कहते इस प्रकार देवी कोई कन्या थी वो आकर नहीं रहा तो सब लोग ये कैसे बाबा है उनकी कन्या को लेकर रखा, बोला आओ देखो कहा मेरे काम, जाकर जब दर्शन कराए तो कन्या वहां बैठी खड़ी है और उनकी पूजा होती है, तो ऐसे कुछ नाम है। इसी प्रकार बहुत स्थान में देखने के बाद भी बहुत छूट जाता है, बहुत देखने के बाद और कुछ रह गया, किंतु ये एक ज्ञान सब ज्ञान कैसे हो सकता है, भी कहते हैं आगे बताते हैं किस प्रकार संभव है, एक ज्ञान से अज्ञान का भी ज्ञान हो जाएगा, ये अच्छा है, नहीं तो कितने देखो कितने पढ़ो कितने तभी तृप्ति नहीं होती, बाकी बच गई। यथा सौम्ययी के नमृत पिंडे न सर्व मृणमय विज्ञातम सियाद वाचारंभम विकारो नाम धेयम मृत्यु के तेव सत्यम, तीन दृष्टान्त दिया पिता ने। यथा सौम्य एकेन मृत पिंडे न, एक मिट्टी का पिंड है, बहुत मिट्टी है ढेर है, उसको जान लिया मृत पिंडे न, जान लिया ज्ञात हो गया, घट आदि बनता है इसे जान लिया मिट्टी है, वो जान लिया मिट्टी को समझ लिया सर्वम मृणमयम विज्ञात हो सिया, मिट्टी का विकार जितने बनाया घट सर्वादि सब देखा कार्य बन गया, मिट्टी के बहुत देखकर गया था आगे आकर देखा से मिट्टी के घटा आदि सब रखा गया, मिट्टी कारणों को जान लिया तो जितने मिट्टी से बना गया सबको जान लिया ये मिट्टी ही है, सर्व मृणमय मिट्टी का विकार सबको समझ लिया। और जो नाम रूप सब अलग अलग है, कार्य है मिट्टी का कार्य, मिट्टी तो ढेर था इतने अभी घटा सर छोटे छोटे बर्तन बन रखे हैं, कभी ये जो कार्य है वाचारंभम वाणी शब्द का आलंबन मात्र है, शब्द का आलंबन कुछ शब्द से हम इसको कहते हैं, घट सर्वाधि शब्द कहते हैं, शब्द का आलंबन कौन आलंबन है, विकारो विकार जो कार्य है मिट्टी का कार्य घट सर्वाधि, वो वाणी के आलंबन जो कार्य विकार, वो विकार कार्य क्या पदार्थ है, कहते नाम ध्येयम, नाम ध्येयम तो नाम मात्र, नाम ही है भेट प्रत्यस्वार्थ में होता है भाग रूप नाम अभ्यस भेट वाच्य, नाम ध्यम तो नाम मात्र शब्द केवल, कार्य कोई पदार्थ है ही नहीं, शब्द केवल प्रयोग होता है, शब्द से अलग कार्य है ही नहीं, घट शब्द हम कहते हैं, मिट्टी को अलग करके देखो क्या पदार्थ है, जो कारण मृद रूप कारण को अलग करके जो घट कहते किसको घट कहे, देखो रथ 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 कहते रथ क्या है, किसको रथ कहते, दिखा दो रथ को, कोई दिखा दिया वो चक्र को दिखा दिया लकड़ी को दिखा दिया उसको दिखा दिया, जिसको दिखा दिया ये रथ है क्या, उसको अलग कर दो, और रथ क्या है एक एक दिखा जाओ किसको रथ कहेंगे, मकान दिखा दिया मकान है किसको मकान कहते, दीवार को दिखा दीवार तोड़ दिया मकान क्या है, दरवाजे को दिखा दिया क्या है, इसी प्रकार कहते मैं तुम कौन हो, मैं नाम बता दिया ये तो तुम्हारा नाम है तुम कौन हो, है मैं हूं ये छाती है तुम कौन हो है हमें क्या ऐसे ऐसे एक एक देख कर जाओ, चक्षु को दिखाओ मन को दिखाओ, ये तुम्हारा मन है या तुम मन हो, फिर ऐसे करते करते फिर निरुत्तर हो जाना पड़ेगा, बड़े सब लोग तो बहुत कुछ जानने के लिए अभिमान करते हैं किन्तु तुम कौन हो मैं कौन हो इसको नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं इसको ठीक है, कोई कहा मैं ब्रह्म वो तो खाली सुना हुआ ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म क्या है मैं क्या है ये समझे, मैं पहले क्या बताओ तो जिसको ब्रह्म कहना, ब्रह्म के नाम से तुम कहते हो, कोई अपने को देवदत्त कहता है चैत्र मित्र नाम कहता है तो ब्रह्म शब्द से कहते हो, किंतु मैं शब्द से किसको लेकर ब्रह्म कहना, ये ज्ञान हो। इसी प्रकार एक तंतु से पट बना, तंतु को अलग करे तो पट कहां दिखेगा, मिट्टी को अलग कर दो तो कहां घट सर्वादी है। कार्य जो है नाम मात्र है, कुछ ना कुछ रूप बना दिया, नाम कुछ कहते हैं। कार्य मिट्टी से भिन्न कुछ है क्या, तंतु से भिन्न पट रहेगा। जिसे तंतु से पट बना, तंतु को अलग कर तो पट कहां रहा, जिसे मिट्टी से घट बना और मिट्टी को अलग कर तो घट कहां दिखेगा। इसे जो कार्य घट आदि कहते हो तो नाम मात्र है, विकारो नाम ध्येयम, तो फिर क्या सत्य है, मृत्यु का इतव सत्य, मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी सत्य, बाकी नाम रूप से कल्पित है। एक मिट्टी पिंड से जितने बनाते हैं, घट सर्वादी बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, सकुड़ा बनाते हैं, और कितने बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। कहीं मिट्टी जो बनाने वाले दुकान में देखो कितने प्रकार बनाते, कितने प्रकार बर्तन, छोटे बड़े कलशी वाले बहुत बनाते हैं। जितने भी बने सब मिट्टी ही है, मिट्टी से बिना कुछ नहीं, मिट्टी सत्य। यहाँ एक मृत पिंड का ज्ञान उनसे मिट्टी का विकार सबको जान लिया, ये मिट्टी है। और उसका जो नाम अलग अलग है, शब्द क्या क्या कहते, रूप अलग अलग बना, किन्तु मिट्टी को समझ लिया, नाम रूप में कुछ रखा नहीं है। नाम तो अलग अलग कोई कह सकता है, अलग भाषा में अलग नाम है। जितने नाम आपको मालूम है अन्य भाषा में उसका नाम, एक घट, हम घट कहते, घड़ा कोई कहता है, उसके ऊपर कितने शब्द है, संस्कृत में शब्द है उसको भी नहीं जानते हैं, और बाकी अन्य भाषा में क्या क्या शब्द है कौन जानता है, बहुत है। तो नाम रूप में कुछ नहीं, कोई कुछ कहता है, तो मिट्टी सत्य है। अर्थात तो मिट्टी कारण को उपादान को जान लिया, उसके कार्य का सबका ज्ञान हो गया, मृत्यु का ही मृत्यु का इतव सत्यम।